ओम शांति। तीन दिन से राजयोग के बारे में सुन रहे हैं। राजयोग क्या है, राजयोग करने की विधि क्या है, सब कुछ सुना और समझा। आज इस सेशन में हम देखते हैं राजयोग द्वारा प्राप्तियां क्या है। सभी मेडिटेशन करना चाहते हैं तो अलग अलग कारण से करना चाहते हैं। कोई मन की शांति के लिए करना चाहते हैं, कोई हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए चाहते हैं, कोई हमेशा सुख रहना चाहते हैं, तो अलग अलग कारण हैं। लेकिन मन की शांति और जीवन में स्थायी सुख पाने के लिए हमें कुछ और चीजों की जरूरत है, वो है शक्तियां। क्योंकि सहन शक्ति के बिना आप सुखी रह सकते हैं जीवन में? अगर सहन शक्ति नहीं है तो सुखी रहेंगे? नहीं। डिसीशन मेकिंग पावर नहीं है, मैं निर्णय राइट निर्णय नहीं ले पाती हूं तो सुखी रह सकती हूं? नहीं। सामना करने की शक्ति नहीं है, हिम्मत नहीं है तो सुखी रह सकते हैं? नहीं। तो सुख और शांति इन शक्तियों का बाय प्रोडक्ट है। जब हम अपने आप के अंदर इन शक्तियों को धारण करते हैं तब सशक्त हो सकते हैं। सशक्त आत्मा हमेशा सुख और शांति की अनुभूति करती है। सशक्त होने के लिए इन शक्तियों के बारे में समझना जरूरी है। वैसे भारतीय संस्कृति में नवरात्रि के दिनों में दुर्गे की पूजा या देवियों की पूजा हम करते हैं, देवियों को अष्टभुजा दिखाते हैं। वैसे इस चित्र में 10 भुजा दिखाया हुआ है। अष्टभुजा एक प्रतीक है। अष्टभुजाधारी क्यों दिखाते हैं देवियों को? कोई ऐसे नॉर्मल इंसान 2 भुजा से ज्यादा हो सकता है? अंगुली भी 5 अंगुली से ज्यादा, छठवां अंगुली आ गया तो अब नॉर्मल माना जाता है, नॉर्मल नहीं है। लेकिन देवियों को अष्टभुजा दिखाते हैं और उनका पूजन होता है, राइट? तो कोई किसी चीज का प्रतीक जरूर है, अष्ट शक्तियों का प्रतीक है अष्टभुजा। कहते हैं ना, आप मेरे राइट हैंड हो। हैंड माना हाथ, माना एक शक्ति है, सहयोग की या कोई भी शक्ति है उसका ही प्रतीक है। और एक एक भुजा में, एक एक हाथ में एक एक शस्त्र दिखाया हुआ है। शस्त्र कब हम प्रयोग करते हैं? युद्ध में किसी को मारना होगा, या देवियों को कहते हैं असुर संहार के लिए इन शस्त्रों का प्रयोग किया था। तो कोई असुर है इस संसार में जिसका संहार करने की जरूरत है? कोई असुर है बड़े बड़े दांत वाले, विकराल रूप वाला? कोई ऐसे असुर है? अपने ही अंदर छिपे हुए नेगेटिविटी, जो विकार है, जो वेस्ट है, जो नेगेटिविटी है, वही हमारा असुर है। उनको हमें संहार करने की जरूरत है, کوئی اثر ایسے باہر کوئی نہیں ہے، اپنے ہی اندر جو نیگیٹیوٹی ہے ان کو سنوار کرنا ہے، اور ان اثروں کو سنوار کرنے کے لیے ان اشٹ شستروں کی ضرورت ہے. یہ اشٹ شستر کون کون سے ہیں؟ ویسے بھی دیویوں کو کہتے ہیں وہ شیو شکتیاں ہیں، شیو کی پتریاں ہیں. اور آپ سبھی کون ہیں؟ آپ سبھی کون ہیں؟ شیو کے سنتان ہیں. پرماتما کا پریچے تو مل گیا. پرماتما کو کہتے ہیں شیو. کوئی دھرم کا یہ نہیں ہے، لیکن شیو مانا جوتی بندو نراکار. ہم سبھی اس پرماتما کے سنتان ہیں، شیو کے سنتان ہیں. تو یہ سرو شکتیاں ہمیں ملی ہوئی ہیں. کیا کہیں گے؟ ورثے کے روپ میں ہمیں ملا ہوا ہے، لیکن کیول اس کو یاد رکھ کر کے، ہمارا ورثہ کون سا ہے یاد رکھ کر کے اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. ہم بھول جاتے ہیں نا. ہمارے پاس ہے، ایسا نہیں ہے کہ باہر سے لانے کی ضرورت ہے. نہیں، ہمارے پاس ہے یہ سرو شکتیاں، لیکن یاد رکھ کر کے اس کو یوز کرنے کی ضرورت ہے. تو اشٹ شکتیاں کون کون سی ہیں؟ ایک ایک، ویسے اس چتر میں سب اشٹ شکتیوں کے بارے میں بتایا ہوا ہے، لیکن ایک ایک ہم دیکھتے ہیں. سب سے پہلی شکتی ہے پاور ٹو وڈرا، وستار کو سنکیرن کرنے کی شکتی. اس چتر میں کیا دیکھ رہے ہیں؟ کچوا، ٹورٹائز. کچوے کی وشیشتا کیا ہے؟ جب چاہے تب اپنے کرمیندریوں کو اندر وڈرا کر سکتا ہے. اس کا اوپر کا شیل بہت ہارڈ ہے، اس کا جو شریر ہے وہ سافٹ ہے. جب بھی اس کو ڈر لگتا ہے نا، وہ اندر وڈرا کر لے لیتا ہے سب اپنے کرمیندریوں کو. کیوں وڈرا کرتا ہے؟ کیونکہ وہاں سرکشت محسوس کرتا ہے. اوپر سے کوئی بھی پتھر پھینکے، کودے، کچھ بھی کرے، وہ اندر سرکشت ہے، کیونکہ اس کا اوپر کا جو شیل ہے وہ ہارڈ ہے نا. ویسے ہی ہم سبھی کے لیے سرکشت جگہ کون سی ہے؟ جب بھی ہمیں ڈر لگے، بھے لگے، کنفیوژن ہو جائے، تو ایسے کون سی جگہ ہے ہم جا سکتے ہیں اور ہم سرکشت محسوس کر سکتے ہیں؟ بابا کے پاس. بابا کے پاس بھی جانے کے لیے کچھ اور ایک قدم اٹھانا پڑے گا. ویسے شاستروں میں، شریمد بھگوت گیتا میں کہا ہے کہ اپنے آپ کو آتما سمجھ مجھ باپ کو یاد کرو. جب تک ہم اپنے آپ کو آتما نہیں سمجھیں گے، تب تک وہ لنک، وہ کنیکشن جڑتا نہیں ہے. وہ آتما کا پتا ہے نا. دیہ سمجھ کر کے ہم یاد کریں، کنیکشن جڑتا نہیں ہے. تو اس لیے آتما سمجھنا بہت ضروری ہے، اور بہت پاورفل استھتی ہے وہ، اور بہت سرکشت جگہ ہے. یہاں اپنے آپ کو آتما سمجھنا، ہمارے سرو کرمیندریوں کو باہر سے وڈرا کر کے، سمیٹ کر کے، سنکیرن کر کے، اپنے آپ کو آتما سمجھنا، یہ بہت پاورفل استھتی ہے. ویسے ساگر میں جب طوفان اٹھتا ہے نا، ہریکین، اسٹارم، وہ سب اٹھتا ہے، تو اس کا جو موومنٹ ہوتا ہے تو وہ سب اسپائرل ہوتا ہے، وہ راؤنڈ کرتے 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 آگے بڑھتا ہے. اگر کوئی جہاز उस तूफान के चपेट में आ गया तो डूबना निश्चित है। अगर कोई कैप्टन बहुत होशियार है वो क्या करेगा पता है? हम सोचते हैं कि उससे बाहर आने की जरूरत है, जब तूफान ऐसा घूम रहा है तो उससे बाहर आने की जरूरत है, क्योंकि जितना हम बाहर आने की कोशिश करते हैं वो तूफान इतना ही फास्ट है, उसमें स्पीड ज्यादा है, तो वो डूबना निश्चित है। लेकिन हिम्मत करके तूफान के बीच में जाने की कोशिश करते हैं, बीच में जाना मुश्किल है लेकिन वहां शांति है, चारों तरफ तूफान है लेकिन बीच की जो जगह है ना वो एकदम शांत है, उसको कहते हैं आई ऑफ द स्टॉर्म, तूफान का आंख कहते हैं, वो एकदम शांत है। अगर जहाज वहां पहुंच गया 100% सुरक्षित, चारों तरफ तूफान है लेकिन वो सुरक्षित है। आजकल के जमाने में हमारी जिंदगी कैसा है? चारों तरफ तूफान है या अंदर भी तूफान है? अंदर भी तूफान है या बाहर सिर्फ बाहर तूफान है? सब जगह तूफान ही तूफान है, राइट? भले तूफान है लेकिन उसका जो सॉल्यूशन है हम बाहर ढूंढने जाए ना, समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं, उसके जो समाधान है हम बाहर ढूंढने जाए, उसके चपेट में आकर हम डूबना निश्चित है। लेकिन उसके बजाय क्या करना है, उसके बजाय क्या करना है? अंदर के तरफ जाने की कोशिश करें। अंदर आत्मा के अंदर कितना पोटेंशियल है, इतनी शक्ति है। एक बार समझ में आ गया खुद के बारे में तो वहां पहुंचने से एकदम निश्चिंत है। मतलब हर कर्म में हम आत्म अभिमानी होकर के करें कि मैं आत्मा हूं, ये कर्म कर रही हूं, बार 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 अपने आप को ये पक्का कराए कि मैं एक आत्मा हूं। उस स्थिति में स्थित होकर के कर्म करे तो आप देखेंगे बहुत समस्याओं का समाधान ऑटोमेटिकली मिल जाता है। वैसे एक अगर महिला है वो टीचिंग कर रही है स्कूल में, बहुत सारे रोल्स हैं उसके, वो एक टीचर भी है, माँ भी है, वाइफ भी है, बहू भी है, फ्रेंड भी है, कोलीग भी है, तो अलग अलग रोल उसको निभाना पड़ता है दिन भर। अगर कोई एक रोल के प्रति उसका अगर अटैचमेंट है, यूजुअली महिलाओं का अटैचमेंट किसके साथ रहता है? बच्चों के साथ, माँ के रोल के साथ, मैं एक माँ हूं, इन दो बच्चों की माँ हूं, इस पर्टिकुलर रोल के साथ बहुत अटैचमेंट है। इस रोल के साथ अगर अटैचमेंट है तो दूसरे जो इतने सारे रोल निभाना है, पार्ट निभाना है, वो क्या होगा, उसको अच्छी रीति निभा नहीं पाएंगे। वो दो बच्चे पैदा होने से पहले आप माँ थे? नहीं थे। वो दो बच्चे पैदा होने के बाद ही आप माँ बने? तो आपका अस्तित्व क्या है वो हमें अपने मतलब अच्छी रीति समझना होगा। मैं आत्मा हूं, माँ का रोल निभा रही हूं, मैं आत्मा हूं, वाइफ का रोल निभा रही हूं, मैं आत्मा हूं, टीचर का रोल निभा रही हूं, मैं टीचर नहीं हूं, मैं वाइफ नहीं हूं, मैं माँ नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। وہ سب رول نبھانا ہے، اس سے ہمیں بھاگنا نہیں ہے، رائٹ؟ لیکن سمجھ کر کے مجھے کرنا ہوگا، میں وہ رول نہیں ہوں۔ جیسے اگر کوئی فلم ایکٹر ہے، رول نبھاتے ہیں، وہ رول ہی میں ہوں سمجھیں گے تو گڑبڑ ہو جائے گا نا۔ ویسے ہی ہم اس بے حد منچ کے پارٹ دھاری ہے، میں ایک آتما ہوں، یہ رول نبھا رہی ہوں۔ یہ جب پکا ہو جاتا ہے تو کرموں میں کشلتا آٹومیٹکلی آ جاتا ہے نا۔ تو سب سے پہلی شکتی ہے، لیکن بہت امپورٹنٹ ہے اپنے آپ کو آتما سمجھ کر کے پھر کرم کرنا۔ اور نیکسٹ پاور ہے پاور ٹو پیک اپ، سمیٹنے کی شکتی۔ اس چتر میں کیا دیکھ رہے؟ ٹریولرز کو دیکھ رہے ہیں، یاتری کو دیکھ رہے ہیں۔ ہم سبھی یاتری ہیں، جیون روپی یاترا میں لگے ہوئے ہیں، جیون کی یاترا کے یاتری ہیں ہم سبھی۔ جب بھی آپ یاترا پر جاتے، آپ سبھی اتنے دور دور سے آئے ہیں، آپ کا لگیج کیسا ہے؟ ایک سوٹ کیس لے کے آئے ہیں یا 10 سوٹ کیس لے کے آئے ہیں؟ کتنے لگیج لے کے آئے ہیں؟ ایک بس۔ تھوڑا بہت زیادہ لے کے آتے تو آرام سے کمفرٹیبلی یہاں رہ سکتے ہیں نا، واشنگ کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تھوڑا بہت زیادہ لے کے آتے تو کیوں نہیں لے کے آئے؟ کیوں نہیں لے کے آئے؟ خود کو اٹھانا ہے، بھار ہو جاتا ہے، وزن ہو جاتا ہے لگیج، تو اٹھانا مشکل ہو جاتا ہے، مینج کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ چلو فلائٹ کا تو لمیٹیشن ہوتا ہے، فلائٹ سے کوئی اگر آئے ہیں لگیج کا لمیٹیشن ہے، لیکن ٹرین سے آئے ہیں تو لگیج کا کوئی لمیٹیشن نہیں ہے۔ لیکن جتنا زیادہ لگیج اتنی زیادہ کیا بڑھ جاتا ہے؟ چنتا۔ ایک سوٹ کیس ہے تو برتھ کے نیچے ڈال کر کے نشچنت ہو کر کے سو سکتے ہیں، 10 سوٹ کیس ہے تو ایک تو جگہ کا پرابلم، دوسرا رات بھر نیند آئے گی؟ اگر کوئی کہے رات کو نا یہ ٹرین ایسے جگہ سے گزرے گی جہاں ڈکیتی ہوتی ہے، چور بہت ہے، تو رات بھر نیند آئے گی؟ ہر اسٹیشن سے اٹھ اٹھ کر کے گنتے رہیں گے لگیج، 10 کے 10 ہے یا کہ کوئی اٹھا کے تو نہیں لے گئے؟ مانا جیون روپی یاترا میں بھی جتنا زیادہ لگیج اتنی زیادہ چنتا۔ تو یہاں جو اناوشک لگیج جو ڈھو کر کے چل رہے ہیں نا، اناوشک لگیج، وہ کون سا ہے جس کو نکالنے کی، یہاں لائٹ کرنے کی ضرورت ہے، لگیج کو کم کرنے کی ضرورت ہے یہاں۔ چنتا کہاں ہوتا ہے؟ من میں نا، من پر جو بوجھ ہے اس کو نکالنے کی ضرورت ہے۔ ایک پرکار کا جو بوجھ ہے من کے اوپر وہ ہے پاسٹ کی چنتا، پاسٹ کے بارے میں اناوشک سوچنا، جو بیت گئی بات، 10 سال پہلے ایسا ہوا تھا، 20 سال پہلے ایسا ہوا تھا، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ایسے کیسے کہہ سکتا ہے وہ، ہے نا۔ اتنے سارے جو نیگیٹیوٹی ہے، نیگیٹو میموریز ہے، وہ ہم لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ آپ کو اپنے جیون میں سکھد گھٹنائیں زیادہ یاد ہے یا دکھد گھٹنائیں زیادہ یاد ہے؟ دکھد گھٹنائیں یاد ہے یا سکھد گھٹنائیں یاد ہے؟ یہ ہیومن ٹینڈنسی ہو گیا ہے دکھ کو پکڑ کر کے رکھنے کی، سکھ کی گھٹناؤں کو ایسے گرانٹیڈ، وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ، ٹھیک ہے نا، ہوتا ہی ہے نا، تو اس کو زیادہ ہم اٹینشن نہیں دیتے ہیں، لیکن دکھد گھٹناؤں کو ہم پکڑ کر کے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو پوچھے کہ آپ کے زندگی میں دکھ زیادہ ہے یا سکھ زیادہ ہے، کیا کہیں گے؟ دکھ زیادہ ہے یا سکھ زیادہ ہے؟ دکھ زیادہ ہے، دکھ زیادہ ہے. جو کہتے ہیں دکھ زیادہ ہے میں نے زندگی میں، وہ ہاتھ اٹھائیں. بہت گنے چنے ہیں. اور جو کہتے ہیں سکھ زیادہ ہے میرے زندگی میں، وہ ہاتھ اٹھائیں. تھوڑا زیادہ ہے، رائٹ؟ اور جو دونوں میں نہیں اٹھائیں ان کا کیا ہے؟ نہ دکھ میں اٹھایا نہ سکھ میں اٹھایا، ان کا کیا ہے حساب؟ وہ ابھی تک کنفیوزڈ ہے کہ پتا نہیں دکھ زیادہ ہے یا سکھ زیادہ ہے. اگر واستوک روپ میں دیکھا جائے ہر ایک کے زندگی میں سکھ زیادہ ہے، رائٹ؟ سکھ زیادہ ہے، لیکن دکھ کو ہم زیادہ اٹینشن دیتے ہیں. سمپل، اگر چلو میں غریب بھی ہوں کچھ بھی ہوں، لیکن چلو پہننے کے لیے دو کپڑے ہیں، کھانے کے لیے دو وقت کا روٹی ہے، سر پر چھت ہے، سمپل ہے لیکن ہے تو صحیح. تو سنسار میں اتنے لاکھوں لوگوں سے تو میری زندگی اچھا ہے، رائٹ؟ تو اس ریتی سے دیکھے تو ہر ایک کی زندگی میں سکھ زیادہ ہے. تو ابھی ہمیں کیا کرنا ہے؟ دکھ کی جو میموریز ہے نا، یاداشت ہے، اس کو مٹانا پڑے گا، مٹانا پڑے گا. مٹائیں گے کیسے؟ کیونکہ جب تک اس کو بھولیں گے نہیں تب تک ہم آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. جیسے جب چلتے ہیں نا، دو پیروں سے جب چلتے تو ایک پیر کہیں اٹکا ہوا ہے، تو کتنی بھی طاقت آپ لگائیں آپ آگے نہیں بڑھ پائیں گے. اس کو فری کرنا پڑے گا. ایسے بدھی روپی پاؤں کہیں اٹکا ہوا ہے، آپ کتنے بھی کوشش کریں کہ مجھے آگے بڑھنا ہے آگے بڑھنا ہے، آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. کہیں اٹکا ہوا ہے بدھی پاسٹ میں، اس نے ایسا کیا، اس نے ایسا کیا، اس نے کتنا بڑا دھوکا دیا، میں نے اتنا کچھ اس کے لیے مدد کی، پھر بھی اس نے ایسا کیا ویسا کیا. اتنی ساری دکھد گھٹنائیں لے کر کے گھوم رہے ہیں، تو اس سے خود کی نقصان ہے. ہم بھاری ہوتے جا رہے ہیں، ہم ٹینشن میں آ رہے ہیں، ہم دکھی ہو رہے ہیں. اناوشک لگیج اس کو نکالنا ضروری ہے. تو کیسے نکالیں گے؟ کس نے اگر آپ کو دھوکہ دیا ہے، چھوٹے موٹے دکھ ٹھیک ہے بھول جاتے ہیں، بہت بڑا دھوکہ دیا ہے آپ کو، تو اس کو کیسے بھولیں گے؟ فورگیو کرنا پڑے گا. جب تک ہم کھما نہیں کریں گے نا تب تک ہم بھول نہیں پاتے ہیں. اس لیے دو شبد ساتھ ساتھ چلتا ہے، فورگیو اینڈ اونلی دین یو کین فورگیٹ. اگر بھولنا ہے، بھولنے کا ایک ہی طریقہ ہے، فورگیو، کھما کرنا پڑے گا. کھما کرنے کے لیے تیار ہیں آپ سبھی؟ رائٹ. تو کھما کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے، کھما کر لیا، جاؤ، ہو گیا، ہو گیا. کئی بار ہم کھما نہیں کرنا چاہتے ہیں. کیوں نہیں کرنا چاہتے ہیں؟ اس نے مجھے اتنا دکھ دیا ہے نا، تو اس کو تو ریٹرن ملنا ہی چاہیے. من کے کونے میں یہ ایک اچھا بنی رہتی ہے، مجھے اتنا ستایا ہے نا جیون میں، وہ دکھی ہو کے ایک دن مرے گا، دیکھنا. یہ شراپ دینا رائٹ ہے؟ شراپ ہی ہو گیا نا، دیکھ رہا ہے ایک دن دکھی ہو کے مرے گا، شراپ ہو گیا. श्राप देंगे तो क्या होगा? रिटर्न तो आएगा ना। कर्म की कुए गति क्या कहता है? जो हम संसार को देते हैं वो लौट कर वापस मेरे पास जरूर आएगा। मैंने अगर श्राप दिया वो श्राप वापस मेरे पास जरूर आएगा, है ना? दिल से किसी के प्रति हाय नहीं निकलना है, तो उसके लिए ताकत चाहिए, उसके लिए शक्ति चाहिए। ब्रेक गाड़ी में ब्रेक पावरफुल है तो एक्सीडेंट नहीं होगा, है ना? ये जो ब्रेक पावरफुल कैसे करे, तो उसके लिए ताकत चाहिए ना। तो उसके लिए हमें मेडिटेशन जितना हम करते जाएंगे शुभ भावना की शक्ति बढ़ती जाएगी। लेकिन ये भी ध्यान दे, कभी भी हम दूसरों के प्रति बद्दुआएं हम न निकालें, उसके बजाय हम क्षमा करें और आगे बढ़े। क्षमा करने से खुद की बेनिफिट है ना, खुद की ये भलाई है कि हम फ्री होकर के, हल्के होकर के हम आगे बढ़ सकते हैं। तो क्षमा करने का तरीका केवल हम कह देने से पर्याप्त नहीं है कि हाँ क्षमा कर लिया, नहीं। जितना हम जिन लोगों को हम प्यार करते हैं उनके प्रति हमारी दुआएं निकलती है, आशीर्वाद निकलता है, ये फूले फले आगे बढ़े, उसके मन की इच्छाएं पूरी हो जाए, मतलब दिल से आशीर्वाद निकलता है जिनको हम बहुत प्यार करते हैं। ऐसे ही जिन्होंने भी हमें दुख दिया है, क्या उनके प्रति हम आशीर्वाद दे सकते हैं, दुआ दे सकते हैं? उसने दुख दिया है, उसने धोखा दिया है, लेकिन इन रिटर्न मैं क्या कहती हूं? फूले फले आगे बढ़े, सुखी रहे। हो सकता है? हो सकता है? ब्लेसिंग देना हो सकता है? ये सीखना होगा। जब तक हम ये सीखेंगे नहीं, सुखी नहीं रह सकते, दुखी होते रहेंगे। इसने ऐसा किया, वैसा किया, ये हुआ, वो हुआ, उसमें ही बुद्धि अटका हुआ है। जो भी जैसा भी व्यवहार करे मेरे साथ, ठीक है, सुखी रहे, फूले फले आगे बढ़े, ऐसे ब्लेसिंग्स देते जाएं, दुआएं देते जाएं, तो देखेंगे आपके जीवन में कितना सुख है। क्योंकि पास्ट के जो बर्डन है वो सब निकल गया ना, पास्ट का लगेज, अनावश्यक लगेज निकल रहा है ना, तो बहुत सुखी रह सकते हैं, है ना? पास्ट को फुल स्टॉप लगाने का एक ही तरीका है, क्षमा करना और आशीर्वाद देना। और नेक्स्ट है अनावश्यक लगेज, भविष्य की चिंता। यहां बैठे हुए सभी को भविष्य की चिंता है, कल क्या होगा, बच्चे बड़े होने के बाद क्या होगा, मेरा रिटायरमेंट होने के बाद क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, अगर एक्सीडेंट हो गया तो क्या हुआ होगा, अचानक कोई बीमारी आ गई तो क्या होगा, कोई चिंता है इससे? चिंता है? चिंता करने से उसका सोल्यूशन निकलता है? चिंता क्या है? कोई भी घटनाएं घटने से पहले ही हम सोच रहे हैं वो घटेगा, ये है चिंता। बीमारी हुई ही नहीं है, हम सोच रहे हैं अगर बीमारी आ गई तो, आई नहीं ना अभी, एक्सीडेंट हुआ नहीं है तो सोच रहे एक्सीडेंट हो गया तो, अभी बच्चे बड़े हुए नहीं है सोच रहे बच्चे बड़े होने के बाद क्या होगा, अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा। घटने से पहले हम यहां उसको देख रहे हैं, मन में देख रहे हैं ऐसा हो गया वैसा हो गया, तो उससे क्या होगा, उससे क्या होगा, वो घटनाएं जरूर घटेगी, क्योंकि मैंने मन की एनर्जी दी ना उसको, मन में उसको वाइंड किया, मन को, मन से मैंने उसको देखा, तो जरूर वो घटनाएं घटेगी। नए नए कार सीखा, ड्राइव कर रहे हैं, डर के साथ ड्राइव कर, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, तो एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जो मैं सोच रही हूं कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए, ये राइट है या रॉन्ग है? रॉन्ग है। एक्सीडेंट हो जाए ये सोचना रॉन्ग है, कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए ये सोचना, ये चिंता है, रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मैं एक्सीडेंट को एनर्जी दे रही हूं। जैसे अगर आपको कहे कि अगले 30 सेकंड में बंदर को याद नहीं करना, तो क्या याद आया? बंदर को याद नहीं करना, ये सुनते ही क्या याद आया? बंदर ही याद आया, बंदर का चित्र आपके मन के पटल पर आया, बंदर को याद किया, लेकिन इंस्ट्रक्शन क्या था? याद नहीं करना। मन इस रीति से कार्य करता है। नहीं जो शब्द है उसको समझ में नहीं आता, पहले बंदर सोचते ही उसका चित्र सामने आ गया, फिर कहो बंदर भाग जाओ, आ गया ना बंदर, कैसे भगाओगे? राइट। ऐसे ही एक्सीडेंट के बारे में सोच करके ये सोचे एक्सीडेंट ना हो जाए, एक्सीडेंट को मैंने एनर्जी दे दी ऑलरेडी, शक्ति दे दी, तो फिर वो एक्सीडेंट मेरे जीवन में होना निश्चित हो जाता है, क्योंकि मैंने उसको इनवाइट किया है, भाई आ जाओ मेरे जीवन में, मैंने इनवाइट किया है तो वो जरूर आएगा। तो इसीलिए भविष्य के बारे में जब भी हम सोचते हैं ना, जो जीवन में नहीं चाहिए उसके बारे में कुछ बिल्कुल नहीं सोचना है, जो चाहिए उसी के बारे में सोचना है। एक्सीडेंट के बजाय क्या चाहिए? एक्सीडेंट नहीं चाहिए, उसकी जगह पर क्या चाहिए? सेफ्टी, सुरक्षा। मैं सुरक्षित हूं, सुरक्षित पहुंच जाऊंगी। सुरक्षा के बारे में सोचते हैं, मैं सुरक्षित हूं। एक्सीडेंट के बारे में सोचेंगे तो एक्सीडेंट जरूर होगा। तो इसीलिए चिंतित होकर के कभी भी हम नेगेटिव ना सोचे भविष्य के बारे में। जो चाहिए उसी के बारे में हम सोचते हैं तो वो भी लगेज, जो एक्स्ट्रा लगेज है ना भविष्य के बारे में, वो भी निकलता जाएगा। तो वर्तमान के बारे में, पास्ट और फ्यूचर के बारे में ज्यादा ना सोच करके वर्तमान के बारे में ज्यादा सोचते हैं, वर्तमान समय से श्रेष्ठ कर्म करते जाएंगे तो भविष्य तो उज्जवल है ही, वर्तमान को पावरफुल बनाएंगे तो भविष्य भी पावरफुल होगा ना? इस रीति से हम हमारे जीवन का जो यात्रा है वो हम सुखदायी बना सकते हैं और बहुत ही हल्के फुल्के होकर के हम जा सकते हैं। और तीसरे प्रकार जो शक्ति है वो है सहनशीलता, पावर टू टॉलरेट। सहन करना कमजोरी की निशानी है या शक्तिशाली आत्माओं की निशानी है? तो फिर हम क्यों नहीं सहन कर पाते हैं? कहीं ना कहीं मन के अंदर ये मान्यता है जो झुकता है, जैसे अगर और झुकाएंगे, और भी झुकाएंगे उस व्यक्ति को, مجھے جھکنا نہیں ہے, مجھے اسٹرانگ رہنا ہے, مجھے پاورفل رہنا ہے. تھوڑا اور یہ کریں گے اور ہی مجھے کچال دیں گے. تو یہ مانیتا جب اگر من میں ہے ہم کبھی بھی سہن نہیں کر پاتے, اور سہن کرنا شکتی شالی آتماؤں کی نشانی ہے. اگر کوئی کس نے بول دیا میرے بارے میں کچھ غصہ ہو کر کے یا غلط چلت کچھ بول دیا میرے بارے میں, اس سمے چپ رہنا مشکل ہے یا بولنا مشکل ہے؟ چپ رہنا مشکل ہے یا بولنا مشکل ہے؟ اس ٹائم پہ چپ رہنا مشکل ہے, بولنا کتنا سہج ہے. اس نے غلط شرط بول رہا ہے میرے بارے میں, ترنت ٹریگر ہو جانا, ترنت اس کو ریئیکٹ کرنا ایزی ہے. لیکن اپنے آپ کو کنٹرول کر کے چپ رکھنا اپنے آپ کو مشکل ہے, رائٹ؟ مشکل ہے. لیکن چپ رہ گئے بہت ساری شکتیوں کو ہم سیو کرتے ہیں. اس کا اوپینین ہے نا میرے بارے میں, کیا فرق پڑنے والا ہے؟ کیونکہ اس سنسار میں اتنے سارے لوگ ہیں جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں, ہر ایک ویکتی اپنا ہی سوچ رہا ہے میرے بارے میں. لیکن میں جو ہوں جیسی ہوں وہ مجھے ہی پتا ہے, رائٹ؟ اگر مجھے کوئی گلٹی فیلنگ نہیں ہے, میں سچے راستے پر جا رہی ہوں, اچھے راستے پر جا رہی ہوں, میں رائٹ ہوں, تو پھر کوئی کچھ بھی سوچے کیا فرق پڑنے والا ہے, رائٹ؟ مجھے اپنے آپ کو مجھے دھوکہ نہیں دینا ہے بس. کوئی کچھ بھی سوچتا رہے کچھ فرق پڑنا نہیں چاہیے, رائٹ؟ تو سہن کرنا شکتی شالی آتماؤں کی نشانی ہے, اور جتنا ہم سہن کرتے جائیں گے آتما کی شکتی بہت جلدی بڑھتا جائے گا. کیونکہ جب ہم غصہ کرتے ہیں, ریئیکٹ کرتے ہیں, بہت جلدی کم سمے میں بہت جلدی شکتی کم ہوتا ہے, ڈرین آؤٹ ہو جاتا ہے, کم ہو جاتا ہے. تو اسی لیے اس کو پرزرو کرنا, اس کو سنبھال کے رکھنا ہمارے ہاتھ میں ہے. لیکن کئی بار ہم یہ بھی کہتے ہیں, لمبے کال تک ہم جب سہن کرتے ہیں نا, پھر کہتے کیا مجھے ہی سہن کرنا ہے, سامنے والا بھی سمجھے نا, کب آخر کب تک سہن کریں گے. اگر یہ بات یہ شبد اگر میرے مکھ سے نکل رہا ہے تو اس کو سہن کرنا کہتے ہیں. دو باتیں ہوتی ہیں یہاں, ایک ہے سہن کرنا, ایک ہے سپریس کرنا. اپنے آپ کو جب ہم سپریس کر رہے ہیں تو اس کو سہن کرنا نہیں کہیں گے. سپریس کب کرتے ہیں ہم؟ کوئی باس, مثال کے طور پر کوئی باس مجھے ڈانٹ رہا ہے بنا مطلب, مجھے اندر سے غصہ تو آ رہا ہے لیکن میں بول نہیں پاتی ہوں کیونکہ وہ بڑا ہے, وہ باس ہے, نوکری کا سوال ہے, بہت سارے لمیٹیشنز ہیں میرے, تو اس لیے میں بول نہیں پا رہی ہوں. لیکن من کے اندر اتنا غصہ ابل رہا ہے جیسے نا, اندر ہے لیکن میں ایکسپریس نہیں کر رہی ہوں, وہ سپریس کرتی جا رہی ہوں. وہاں میں باس کے سامنے میں نے سپریس کیا لیکن کہاں جا کر کے ریلیز ہوگا؟ گھر والوں کے سامنے. گھر والے تو اپنے ہی ہیں نا, کہاں بھاگ جائیں گے. تو بار بار وہ جو بھی آفس کا جو پریشر ہے گھر میں جا کر کے ریلیز ہو رہا ہے. یہ رائٹ ہے؟ یہ رائٹ ہے؟ رائٹ ہے؟ بہت سارے لوگ یہاں ایسے کر رہے ہیں, رائٹ ہے؟ نہیں ہے. کب تک بیچارے گھر والے سہن کرتے رہیں گے آپ کی, رائٹ؟ تو سہن सहनशीलता, सहनशीलता में दो शब्द हैं, सहनशीलता है ना। सहनशीलता माना बाहर से भी सहन करना, चुप रहना। शीतलता माना अंदर भी कूल, कोई भी नेगेटिविटी अंदर भी नहीं है, यहां भी शांत, यहां भी कूल, शीतल है ना। तो अंदर से भी जब पॉजिटिविटी है, मन पॉजिटिव है, तो उसको हम कहेंगे सहनशीलता। बच्चा छोटा है, अगर बार बार वो बीमार पड़ रहा है तो माँ क्या करती है, रात को भी जाग करके उसकी देखभाल करेगी, बहुत कुछ कष्ट उठाएगी, लेकिन बहुत कुछ सहन करना पड़ रहा है उसको, लेकिन कभी भी उसको प्रेशर नहीं फील कर वो प्रेशर फील नहीं करती है, क्योंकि प्यार है, प्यार के कारण से सहन कर रही है, वहां दुख नहीं है। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है उसकी देखभाल करने की। जहां प्यार है वहां सहन करना इजी है। वही अगर कोई आपके रिलेटिव के बच्चे को आपके घर में पढ़ाई करने के लिए छोड़े हुए हैं, लेकिन वो बच्चा बार बार बीमार पड़ रहा है, उसकी देखभाल करना हो रहा है, आप देखभाल करेंगे? अपने बच्चे की देखभाल करने में वो भारीपन नहीं लग रहा है, क्योंकि मेरा बच्चा है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेकिन ये मेरे रिलेटिव का बच्चा है, वो बार बार बीमार पड़ रहा है, उसकी देखभाल करने के लिए मुझे लग रहा है वो भारीपन लग रहा है, बर्डन लग रहा है। क्यों? यहाँ प्यार है, वहां प्यार की कमी है, अपनापन नहीं है, है ना। जहां भी सहन शक्ति की कमी होती है ना, अपने आप को चेक करें, कहीं प्यार की कमी तो नहीं हो रहा है। सहन करना तब इजी हो जाता है जब स्नेह, अपनापन, प्यार बढ़ता है, वहां सहन करना इजी है ना। तो इसीलिए आजकल परिवार क्यों टूट रहे हैं, प्यार की कमी है। प्यार की कमी के कारण से सहन करना मुश्किल हो रहा है, तो रिश्तों में दरार होता चलता आया है ना। और नेक्स्ट शक्ति है पावर टू एडजस्ट, समाने की शक्ति। सागर को जब हम देखते हैं तो सागर की खूबी क्या है? सागर की खूबी ये है, अच्छी अच्छी चीजों को वो समा लेता है, जो गंदगी है ना उसको बाहर फेंक देता है। कोई भी सुसाइड भी करे ना, जाकर के आत्महत्या भी करे, तो 3 दिन के बाद डेड बॉडी बाहर, जो भी किचड़ा है वो बाहर फेंक देता है। और सागर के तले में जब हम जाते हैं ना, वहां हीरे मोती रत्न चलते हैं। अंदर के जो पानी है वो बहुत साफ सुथरा है, किनारे पर गंदगी है पूरा निकाला हुआ। ऐसे ही संसार रूपी सागर में इतने सारे लोगों को जब हम मिलते हैं, हर एक के साथ हम एडजस्ट होकर के चले, वो कैसे हो सकता है? अगर एडजस्ट होकर के नहीं चल पाते हैं तो क्या कहेंगे, इसके साथ एडजस्टमेंट नहीं हो सकता, इसके साथ एडजस्टमेंट नहीं हो सकता। किसी के साथ भी मेरा एडजस्टमेंट अगर नहीं होता है तो किसके साथ जिएंगे हम? मनुष्य तो सोशल प्राणी है, सामाजिक प्राणी है, तो वो तो लोग चाहिए ही उसको, लोगों के बिना तो नहीं रह पाएंगे। तो लेकिन हर एक के बारे में मैं कंप्लेन करती रहूं, इसके अंदर ये कमी है, उसके अंदर ये कमी है, इसके अंदर ये है, कंप्लेन करती रहूं, एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो अकेले रह जाएंगे। फिर अकेले जब रह जाएंगे तो लोनलीनेस, अकेलापन, तो अकेलापन में फिर टेंशन, फिर वो खालीपन, डिप्रेशन, वो सब आने की संभावनाएं हैं। तो इसीलिए हर एक के साथ एडजस्ट होकर के चलने के लिए एक गोल्डन रूल है, बहुत इजी है। वो गोल्डन रूल कौन सा है? हर एक के अंदर के खूबियों को देखो। इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसके अंदर एक भी गुण ना हो। ऐसा है कोई व्यक्ति? ऐसा कोई है कोई व्यक्ति एक भी गुण ना हो? ऐसा कोई है? नहीं है। एक तो गुण होगा किसी के हर एक के अंदर। तो गुण देखने की आदत हम डालें। जब नए नए मिलते हैं ना लोगों से, तो उनके गुणों को देखते हैं। वाओ, इसके अंदर ये गुण है, ये कैपेसिटी है, ये स्किल है, पॉजिटिविटी को देखते हैं। लेकिन रहते 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 उनके साथ मिलते जुलते रहते रहते क्या होता? नए नए शादी किए थे आपने, तो पहले कुछ दिन कैसा था? बहुत अच्छा था, राइट? क्योंकि हर एक दूसरे के खूबियों को देखते थे। लेकिन रहते 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 क्या हुआ? उनके अवगुणों को भी देखना शुरू किया। देखते 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 क्या हुआ? रहते रहते गुणों को देखना बंद कर दिया, अवगुणों के बारे में ज्यादा अटेंशन देना शुरू किया, अवगुणों के बारे में ही ज्यादा मनन चिंतन चलता रहा, तो फिर रिश्तों में दरार आना शुरू हो। तो वही संबंध कुछ साल पहले बहुत अच्छा लगता था, वही व्यक्ति कुछ साल पहले बहुत अच्छा लगता था, लेकिन वही व्यक्ति कुछ सालों के बाद उसको चेहरा देखने का मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि नेगेटिविटी इतना ज्यादा है। लेकिन अगर बैठ करके सोचे उस व्यक्ति के बारे में, उसके उस व्यक्ति के अंदर कुछ गुण भी है तो सही, लेकिन हमने ज्यादा उसके बारे में अटेंशन नहीं दिया। अपने परिवार वालों को के बारे में सोचिए, उनके कोई भी एक व्यक्ति, चाहे आपके स्पाउस है, आपके युगल है, तो उनके गुणों का लिस्ट बनाने के लिए अगर कहते हैं, बना सकते हैं? चलिए तीन गुण बताइए अपने हस्बैंड के या वाइफ के, हो सकता है? सोच, भले बताइए नहीं, सोचिए तीन गुण अपने हस्बैंड के या वाइफ के, तीन अवगुण। अवगुण के बारे में सोचना इजी था या गुण के बारे में सोचना इजी था? अवगुण के बारे में सोचना इजी था या गुणों के बारे में सोचना इजी था? कुछ लोगों को अवगुण के बारे में सोचना इजी था, राइट? क्यों? क्योंकि उसी के बारे में बार बार सोच रहे थे ना, उसी के बारे में मेरे एनर्जी अटेंशन जा रहा है, तो वो ऊपर के मेमोरी में ऊपर है, तो इसलिए फटक से बोलना इजी हो जाता है। लेकिन कभी हमने ध्यान दिया? हाँ, पता है गुण है, लेकिन वो ऊपर की मेमोरी में नहीं है, वो बहुत बार बहुत समय तक सोचने के बाद, हाँ सोचेंगे, हाँ इसके अंदर ये भी गुण तो है, सही तो सही, तो ये बहुत सोचना पड़ता है गुणों के बारे में सोचने के लिए, है ना? तो अभी से क्या करना है, आज से क्या करना है, हर एक के अंदर गुणों को देखने की आदत डालना है, राइट? जब मेरे अंदर गुण और अवगुण दोनों हैं, कुछ परसेंटेज में गुण भी है, कुछ परसेंटेज में अवगुण भी है मेरे अंदर, राइट? जब मेरे अंदर गुण और अवगुण दोनों हैं, तो दूसरों के प्रति मैं एक्सपेक्ट कैसे करूं कि उसके अंदर केवल गुण होना चाहिए? एक्सपेक्ट कर सकती हूं? नहीं। मैं खुद ही, मेरे अंदर अवगुण है, उसके अंदर अवगुण बिल्कुल ना हो, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूं। یہ ریالٹی ہے. ہر ایک کے اندر گن اور اوگن ہے, پرسنٹیج ویری ہوتا ہے بس. کچھ کے اندر گن زیادہ ہے اوگن کم ہے, کچھ لوگوں کے اندر اوگن زیادہ ہے گن کم ہے, پرسنٹیج ویری ہوتا ہے بس, ہے نا. تو یہ عادت ڈالیں ریالٹی کو سمجھ کر کے, یہ عادت ڈالتے جائیں گے میں گنوں کو انرجی دے رہی ہوں تو وہی میں اٹریکٹ کر رہی ہوں. بار بار میں اوگنوں کو دیکھتی ہوں میرے اندر وہ اوگن آ جاتے ہیں. تو اس لیے وہ تھوڑا زیادہ ساودھانی سے چلنا پڑے گا. جو میں دیکھوں گی اس کو میں اٹریکٹ کر رہی ہوں, اوگنوں کو بار بار دیکھ رہی ہوں, اوگن میرے جیون میں آ جائیں گے. تو اس لیے گنوں کو دیکھنے کی عادت ڈالتے جائیں اور ساگر کو ہم یاد رکھیں. کیسے کچڑے کو باہر پھینک کر کے موتی ہیرا موتی کو اندر لے لیتا ہے, ایسے میں بھی کچڑے کو باہر پھینک کر کے کیول پوزیٹیویٹی کو لیتی چلوں. نیکسٹ شکتی ہے پاور ٹو ڈسکریمنیٹ, پرکھنے کی شکتی. اس میں کیا دکھا رہے ہیں, ہیرے کو پرکھنے کے لیے لینس, لینس کے دوارا ہم دیکھتے ہیں نا ہیرے کو, پتا چلتا ہے کہ ہیرے میں کتنا داغ ہے, کتنا پیور ہے وہ پتا چلتا ہے. اور سونے کو پرکھنے کے لیے کسوٹی ہوتا ہے, پتھر ہوتا ہے اس کے پر گستے ہیں تو پتا چلتا ہے کتنے کیرٹ کا وہ گولڈ ہے, ہے نا. ہمارے زندگی میں ہم دو چیزوں کو پرکھتے ہیں, ایک ہے پرستھتی اور دوسرا ہے لوگ. لوگوں کو اور پرستھتیوں کو ہم پرکھتے ہیں پرکھنے کے لیے. سونار تو پھر وہ کسوٹی کو یوز کرتا ہے اور ڈائمنڈ کو پرکھنے کے لیے لینس کو یوز کرتے ہیں. تو ہم کس چیزوں کو, کس چیز کو یوز کریں, پرستھتی کو یا ویکتی کو پرکھنے کے لیے؟ وہ ہے بدھی. بدھی سے ہم پرکھتے ہیں نا یہ ویکتی کو کیسا ہے یا پرستھتی, اس پرستھتی میں کیا کرنا ہے, یہ بدھی سے پرکھتے ہیں. تو بدھی سے پرکھنے کے لیے بدھی کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. بدھی جتنا کلیئر ہے کلین ہے تو ہم اس چیزوں کو سمجھ پاتے ہیں. بدھی کو کلیئر کرنے کے لیے میڈیٹیشن, میڈیٹیشن سے ہم اپنے من اور بدھی کو کلین کر سکتے ہیں, کلیئر رکھ سکتے ہیں. اس کے آدھار سے ہمارے اندر پرکھنے کی شکتی بڑھتی جاتی ہے. اور نیکسٹ شکتی ہے پاور ٹو ڈیسائیڈ یا نرنے کرنے کی شکتی. نرنے کرنے کی شکتی جتنا جیسے ہم پرکھتے ہیں اس آدھار سے ہم نرنے لیتے ہیں. یہ دو شکتی جو ہے نا وہ بہت ڈیپلی کنیکٹڈ ہے, پرکھنے کی شکتی اور نرنے کرنے کی شکتی. اور اس چتر میں کیا دیکھ رہے ہیں, نیائے کی دیوی, نیائے کی دیوی کا چتر. یہ جو امیج ہے, یہ جو آئیڈل ہے وہ کہاں دیکھتے ہیں ہم, ایک مورتی کورٹ میں دیکھتے ہیں. اور نیائے کی دیوی کے ایک ہاتھ میں ترازو ہے اور دوسرے ہاتھ میں تلوار ہے اور آنکھوں پر پٹی ہے. ترازو مانا, ترازو کس لیے ہے ایک ہاتھ میں, امپارشل ڈیسیشن ہے نا, جو بھی نرنے لے نشپکش نرنے, ترازو تول کر کے نرنے لے تول کے, ہے نا. اور یہ سوارڈ جو ہے, تلوار جو ہے, تلوار گیان کا پرتیک ہے. گیان کے آدھار سے, سمجھ کے آدھار سے ایک ٹک ہو کر کے ہم نرنے لے, اس کا پرتیک ہے. اور آنکھوں پر پٹی مانا, آنکھوں پر پٹی مانا, جب ہم نے پوچھا نا آنکھوں پر پٹی کا مطلب کیا ہے تو کس نے بولا اندھا قانون. نہیں, جو بھی ہمیں نرنے لینا ہے آنکھوں پر پٹی باندھ کر کے نرنے لیں گے تو کیا ہوگا, impartial decision. अगर आंखों पर पट्टी बांधेंगे तो impartial decisions हो जाएंगे, निष्पक्ष निर्णय हो जाएगा. अगर ऐसा होता तो महाभारत नहीं होता, राइट? उन्होंने जब भी कोई निर्णय लिया पुत्र मोहवश उन्होंने गलत निर्णय लिया, तो इसीलिए तो महाभारत हुआ. अगर निष्पक्ष रूप से उन्होंने निर्णय लिया होता तो महाभारत होने की संभावना ही नहीं थी. तो आंखों पर पट्टी बांधने से हमारे निर्णय सही नहीं हो जाते. आंखों पर पट्टी माना ये मैसेज दे रहा है कि जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है. तो इसीलिए इन आंखों से देखना जरूरी है, लेकिन देखने के बाद जो दिख रहा है उस पर 100% निश्चय नहीं करना, 100% विश्वास नहीं करना, क्योंकि जो दिख रहा है वो कुछ अलग है, जो हो रहा है कुछ अलग होता है. कई बार उतावले में आकर हम गलत निर्णय ले लेते हैं, है ना? हम बचपन में एक छोटी सी कहानी सुनते थे ना, कि एक जंगल में एक परिवार बसा था. वो जो हस्बैंड था, पति था, वो रोज लकड़ी काट करके बाजार में बेचने के लिए रोज सुबह से शाम तक बाहर रहता था. महिला अकेली होती थी और एक छोटा सा बच्चा होता, 6 मास का बच्चा था. तो एक बार वो पानी भरने बाहर गई और घर में नेवला था, नेवला पाल के रखा था. तो जब वापस आई तो उसने क्या देखा, घर के दरवाजे पर नेवला बहुत कूद कूद करके वो कुछ दिखा रहा है अपने मालकिन को. उसके मुंह पर खून के धब्बे थे. और महिला ने क्या सोचा, मेरे बच्चे को इसने मार दिया करके वो जो पानी का घड़ा है वो नेवले के ऊपर डाल करके वो अंदर भाग करके गई और क्या देखा, सांप मरा था और बच्चा खेल रहा था. नेवले ने सांप को मारा था इसलिए वो खून के धब्बे थे, लेकिन महिला ने क्या सोचा, मेरे बच्चे को इसने मारा तो नेवले को उसने मार दिया. नेवला मर जाने के बाद उसको अफसोस हुआ, अरे मैंने तो गलत किया, बेचारे हुए नेवले ने तो मेरे बच्चे को बचाया है. कई बार जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं. कुछ देख लेते हैं उसके बाद उसके ऊपर हम अपने हवाई महल खड़ा कर देते, ऐसा क्यों हुआ, शायद ऐसा हुआ होगा. अपने ही सोच के आधार से, अपने ही इमेजिनेशन से कुछ हम सोच लेते हैं, उसके आधार से हम निर्णय ले लेते हैं, निर्णय लेकर के कर्म भी कर लेते हैं. कर्म कर लेने के बाद बस सच्चाई जब पता चल जाता है फिर हम अफसोस करते हैं. थोड़ा सा धीरज, अगर उस महिला ने थोड़ा सा धीरज धर करके, पेशेंस रख करके अंदर जाकर के देख लिया होता, फिर सच्चाई क्या है वो पता चलता उसको. तो नेवले को मारती नहीं थी. तो जब भी जीवन में निर्णय लेना होता थोड़ा सा धीरज धर के सच्चाई क्या है उसको जांच करके फिर निर्णय लेना बहुत जरूरी है. एक है धीरज और दूसरा है आंखों पर पट्टी माना, अपने अंतर मन की आवाज को सुनने की आदत डालना. इंट्यूशन कहते हैं ना, अंतर मन की आवाज को जब हम सुनने की आदत डालते हैं, क्योंकि फैक्ट कुछ अलग है, दिखाई जो दे रहा है वो कुछ अलग है, अंतर मन की आवाज कुछ और कह रहा है ना. ये भले कुछ भी प्रूव करने की कोशिश करे ना कहीं गलत जरूर है. ये अंतर मन कुछ आवाज दे रहा है, राइट? तो वो सुनने की आदत डाले, क्योंकि अंतर मन कभी भी गलत नहीं हो सकता, इंट्यूशन कभी भी गलत नहीं हो सकता. जितना हम उसको सुनने की आदत डालते हैं उतना वो बुलंदी से सुनाई देता है. और इंट्यूशन को सुनने की आदत कैसे डालेंगे? कई बार मन की आवाज, मन में जो विचार आ रहे हैं वो इंट्यूशन नहीं है, ये दो अलग अलग चीज है। इंट्यूशन माना अपने संस्कार के अंदर जो बातें होती है वो बाहर आता है, वो है इंट्यूशन। मन में जो सोच रहे हैं वो मन, चेतन मन का सोच है। तो जितना हम मन को शांत रखते हैं, शांति का अभ्यास करते हैं, शांति की अनुभूति करते हैं, मन को शांत करते जाते हैं, उतना हमारे इंट्यूशन पावरफुल हो जाता है। जैसे रेडियो स्टेशन में दो स्टेशन मिक्स हो जाता है तो क्या होता है, किचपिच 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 आवाज आता है ना। तो एक स्टेशन मुझे सुनना है तो दूसरे स्टेशन के फ्रीक्वेंसी को थोड़ा ये करना पड़ेगा, ट्यून करना पड़ेगा उसको, है ना, उसको कम करना पड़ेगा या फिर सेट करना पड़ेगा। तो इसको मन की आवाज को जितना हम शांत करते जाते हैं उतना हम अंतर्मन की आवाज को बुलंदी से सुन सकते हैं, तब हमारे निर्णय सही निर्णय हो सकता है। और सातवां शक्ति है सामना करने की शक्ति। इस चित्र में देख रहे हैं एक व्यक्ति सर्फिंग कर रहा है, एंजॉय कर रहा है सर्फिंग को। जिसको सर्फिंग नहीं आता वो तो डर जाए, बाप रे इतना बड़ा वेव है तो ऐसे कैसे डूब जाए, तो है ना, वो स्किल की जरूरत है, उसको सीखना पड़ता है, सर्फिंग करने को सीखना पड़ता है। एक है स्किल को सीखना और दूसरा है निर्भयता, हिम्मत, जीवन के चैलेंजेस को, जीवन के समस्याएं जो आते हैं वो बोल के आते हैं, जीवन के जो समस्याएं हैं चैलेंजेस है वो बोल के नहीं आते, अचानक हो जाते। सुबह तो सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक कुछ हो गया। कभी सोचा था श्रीदेवी जी शरीर छोड़ सकते हैं, अचानक हो गया एक दिन रात, राइट। जो भी जीवन में होता है, जो भी संसार में होता है समस्याएं अचानक आ जाते हैं, तो उसके लिए हम तैयार हैं, उसके लिए तैयार है, तैयार करना पड़ता है। तैयार तब हो सकते हैं जब हमारे अंदर हिम्मत है। और दूसरी बात यह है कि जीवन के हर पहलू को हम सीरियसली ना ले, खेल समझ करके इजीली अगर लेते हैं ना बहुत इजी हो जाता है, सीरियस लेते हैं तो बहुत मुश्किल लगता है, छोटी छोटी बातें बहुत बड़ा लगने लगता है। और जब हमारे अंदर हिम्मत है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, विश्वास है खुद पर और दूसरा है परमात्मा पर विश्वास, इन दो पर अगर विश्वास है हर चीज सहज होना शुरू हो जाता है। खुद में विश्वास है कि ठीक है जो भी प्रॉब्लम्स आए मेरे अंदर क्षमता है सामना करने की, ये विश्वास है खुद। और दूसरा है विश्वास परमात्मा में, कुछ भी हो उनकी छत्र छाया मेरे ऊपर है, वो मेरा साथी है। कहते हैं ना, अगर भगवान साथ है तो क्या करेगा आंधी और तूफान, आंधी और तूफान भी तोहफा बन जाए। मेले में छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा बाप का हाथ पकड़ करके जा रहा है, वो निश्चिंत है, मेले में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन वो बच्चा निश्चिंत क्यों है, मेरा बाप मेरे साथ है ना, तो इसलिए निडर होकर के वो घूम रहा है। ऐसे ही इस मेले में, संसार रूपी मेले में हम अकेले नहीं हैं। कौन मेरे साथ है, वो पिता मेरे साथ है, मैंने उसके अंगुली को नहीं पकड़ा है, उसने मेरे अंगुली को पकड़ा हुआ है, ये समझना। हमेशा उसने आपके अंगुली को पकड़ करके रास्ता दिखा रहा है। अगर हम पकड़ते उसके हाथ तो क्या होता, अलबेले पद में आकर के हम छोड़ भी जाए उनके हाथ को, लेकिन बाप अपने हाथ बच्चे के से नहीं हटाएगा, है ना। तो ये याद हमेशा रखना कि वो पिता हमें मेरे साथ हमेशा है। वो जब अनुभूति करते हैं तो ऑटोमेटिकली गाइडेंस मिलना शुरू हो जाता है। जब ये महसूस करते हैं ना, पिता मेरे साथ है, परमात्मा मेरे साथ है, तो ऑटोमेटिक समस्याएं आएंगी। ठीक है, जीवन में तो समस्याएं तो आएंगी, चैलेंजेस तो आएंगे, लेकिन जब पिता साथ में है समस्याओं का समाधान बहुत सहज मिल जाता है, राइट। तो हमेशा ये याद रखना, वो आप अकेले नहीं है इस संसार रूपी मेले में, परमात्मा हमेशा मेरे साथ है। और आठवीं शक्ति है, लास्ट शक्ति, पावर टू कॉपरेट, संयोग की शक्ति। इस संसार में हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, संयोग तो चाहिए, मदद तो चाहिए, हर एक की मदद की जरूरत है। मदद कैसे मिलेगा? मांगने से मिलेगा। मांगने से मिलेगा मदद? प्लीज मेरी मदद कर लीजिए, प्लीज मेरी हेल्प कर देना, हेल्प मांगने से मिल जाएगा? एक दो बार तो मिल भी जाए, हमेशा मैं मांगती ही रहूं तो नहीं मिलेगा। मदद लेने के लिए मदद देनी पड़ेगी। जितना मैं मदद करती जाऊंगी, देती जाऊंगी, उतना मुझे रिटर्न में मिलता जाएगा। लेकिन जब भी हम किसी को मदद करते हैं ना, कहीं बार हम निस्वार्थ रूप से कर लेते हैं मदद, कहीं बार कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशन रख करके करते हैं। मान लीजिए मेरा फ्रेंड है, उसके बहुत नुकसान हो गया बिजनेस में, तो मैं आउट ऑफ द वे जाकर के भी उसकी मदद की, हर रीति से, फाइनेंशियल धन से, दूसरे तरीके से, बहुत तरीके से मैंने उसकी मदद की, फिर से उसके बिजनेस को खड़ा किया हर रीति से। दो साल के बाद जब मुझे मदद की जरूरत है तो मैं किसके पास जाऊंगी? उसी फ्रेंड के पास जाऊंगी जिसको मैंने मदद की थी। क्यों? कि मैं सोचती हूं मेरा अथॉरिटी है, मेरा राइट है, क्योंकि मैंने उसकी मदद की थी और उसको अभी मेरी मदद करना पड़ेगा। ये सोच करके मैं जाऊंगी उसके पास, अथॉरिटी समझ करके जाऊंगी, लेकिन किसी भी कारण से वो व्यक्ति मेरी मदद नहीं कर सकता तो क्या हो जाता? बहुत गुस्सा आएगा। देखा, दो साल पहले मैंने कितना मदद की थी, वो तो रास्ते पर आ गया था, फिर भी मैंने खड़ा किया उसको, लोगों ने बहुत कुछ बोला, उसकी मदद नहीं करो, ये करो, वो नहीं करो, लेकिन फिर भी लोगों का ना सुन करके मैंने उसकी मदद की, ये किया, वो किया। देखो आज मेरी मुझे मदद की जरूरत है, वो तो ना कर दिया, कोई उसका एहसान मंद नहीं है, ये है वो, बहुत गुस्सा आएगा। ये किसकी गलती है? ये मेरी गलती है, उसकी गलती? फिर बाद में हम सोचते हैं कि आगे से किसी की भी मदद नहीं करना है, वो सभी संसार में सभी ऐसे हैं, तो कभी किसी की भी मदद नहीं करना है। हम स्वार्थी हो जाते हैं, केवल अपनी जिंदगी को देखते हैं। ये राइट है? रॉन्ग है। तो यहां सोचने का जो तरीका है ना, थोड़ा सा बदलने की जरूरत है। हमने मदद की, ठीक है, वो राइट किया, लेकिन बाद में जो मैंने सोचा ना, मुझे मदद चाहिए तो उसी व्यक्ति से चाहिए, ये रॉन्ग था। और तीसरी इसमें सोचा कि इसने मदद नहीं की ना, संसार के सभी ऐसे लोग ऐसे हैं, तो मुझे किसी की मदद करनी ही नहीं चाहिए, वो तो और गलत। क्यों? कर्मों की गुह्य गति क्या कहता है? अगर आप जो दुनिया को दोगे वो लौटकर आपके पास आएगा, आप सुख दोगे तो सुख लौट कर वापस आएगा, लेकिन ये नहीं कहता कर्मों की गुह्य गति। जिसको आपने सुख दिया है उसी व्यक्ति से सुख आएगा, कहीं भी नहीं कहा हुआ है। आएगा जरूर सुख, मेरे जिंदगी में सुख आएगा, ये जरूरी नहीं है उसी व्यक्ति से मुझे आएगा। राइट? जो मैंने मदद दी ठीक है किया, लेकिन मुझे जब जरूरत होती है ना मदद की, कहीं ना कहीं से मुझे मदद मिल ही जाएगा। लेकिन उसको छोड़ करके हम सोचे जिसको मदद की थी ना उसी से चाहिए मुझे, इससे मदद मिल रही है मुझे, उसको छोड़ देते हैं, फिर ये सोचते नहीं जिसको मदद की थी ना उसी से चाहिए, ये रॉन्ग हो जाता है। इसी से इसीलिए हम दुखी हो जाते हैं, इसीलिए हम फिर गलत निर्णय लेते हैं जीवन में, मुझे मदद करनी ही नहीं चाहिए किसी की। तो एटलीस्ट ये जब हमें पता है अगर मैं किसी की मदद करती हूँ वो मदद लौट करके मुझे मिलेगा जरूर कहीं ना कहीं से, तो वो मोटिवेशन मिलता है मुझे मदद करने की, है ना। तो लेकिन कंडीशन ना डाले कि मुझे उसी से चाहिए, अगर वो कंडीशन निकाल देते हैं ना तो हम सहयोग देते जाएंगे तो सहयोग मिलता जाएगा, सहयोग देते लेते तो संसार सुखमय हो जाता है, है ना। तो इसीलिए कोई डिपेंडेंसी ना हो, जैसे माला में मणके हैं, 108 मणके होते हैं, एक एक मणका इंडिविजुअल है, वो चिपका हुआ नहीं है, एक टच कर रहे हैं लेकिन इंडिविजुअल है, चिपके हुए नहीं है। हम भी, हम सभी मणके हैं एक एक, हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है, हर एक आत्मा अपने आप में संपूर्ण है। लेकिन माला के मणके हैं, एक दूसरे के मदद के साथ हम जब जीवन में चलते हैं तो बहुत जीवन बहुत सुखदाई हो सकता है। डिपेंडेंट नहीं है और इंडिपेंडेंट भी नहीं है, लेकिन हम इंटरडिपेंडेंट हैं। इंटरडिपेंडेंट माना हमें आपकी जरूरत है और आपको हमारी जरूरत है। इंटरडिपेंडेंसी से हम जब हम चलते हैं ना जीवन बहुत सुखदाई हो सकता है, ठीक है ना। तो ये है अष्ट शक्तियां। इन अष्ट शक्तियों को जब हम धारण करते हैं संपूर्ण रूप से 100%, जब 100% हम जीवन में धारण करते हैं, आत्मा जैसे डायमंड हो जाती है, डायमंड हीरा, हीरा हीरे में दो खूबियां हैं, एक है बहुत खूबसूरत, उसकी जो शाइनिंग है बहुत खूबसूरत है, बहुत ही ज्यादा है उसका, है ना। और दूसरा है डायमंड बहुत हार्ड है, बहुत स्ट्रांग है। डायमंड को काटने के लिए डायमंड ही चाहिए, बहुत हार्ड स्टोन है वो। और डायमंड को जब ये खान से निकालते हैं ना, ये जो पत्थर देख रहे हैं ऐसा दिखता है, लेकिन उसी पत्थर को पॉलिश करके एंगल से काट करके थोड़ा सा पॉलिश करते हैं, उसकी जो शाइनिंग है वो बढ़ जाता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो हम सभी आत्माएं हीरे हैं, डायमंड्स, हर एक डायमंड है, स्ट्रांग है, शक्तिशाली है और बहुत खूबसूरत है। उसकी जो स्पार्कल है, उसकी जो शाइनिंग है वो बहुत खूबसूरत है, लेकिन अभी क्या जरूरत है, बस एंगल से काट करके थोड़ा सा पॉलिश करने की जरूरत है। बस थोड़ा सा पॉलिश हो गया, थोड़ा सा दाग उससे निकाल दिया तो उसकी जो शाइनिंग है और भी बढ़ सकता है ना। तो ये जो अष्ट शक्तियों को हमने सुना, जितना हम अपने जीवन में उन शक्तियों को धारण करके कर्मों में दिखाते, कर्मों में वो धारण करते हैं, तो धीरे 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 आत्मा परिपूर्ण हो जाती है और डायमंड जैसे शक्तिशाली और खूबसूरत बन सकती है। ठीक है, तो ये रहा आपका लास्ट सेशन, इस कॉन्फ्रेंस का लास्ट सेशन रहा। और यहां से जाते जाते क्या करेंगे अभी, जैसे सुजाता बेन ने कहा, ये न्यू बिगिनिंग है, एक नई शुरुआत है, ये कॉन्फ्रेंस का एंडिंग नहीं है, जीवन की एक नई शुरुआत है, क्योंकि नई समझ आप लेकर के यहां से जा रहे हैं, नई समझ नई प्रेरणा लेकर के जा रहे हैं, तो नई शुरुआत है, तो उसको ऐसे ही बरकरार रखने के लिए क्या करना होगा, अभी क्या करेंगे, यहां से जाएंगे तो पड़ोसी रिलेटिव सभी को आप कहेंगे, हाँ माउंट अबू जाके आए, बहुत अच्छा था प्रोग्राम, बहुत अच्छा था क्लासेस, बहुत बढ़िया बढ़िया थे, ज्ञान बहुत अच्छा था, ये सब चलेगा 15 दिन, 15 दिन के बाद फिर भूल भी जाएंगे, माउंट अबू को भूल भी जाएंगे, हाँ क्लासेस तो अच्छे थे लेकिन क्या बोला था दीदी ने, बहुत अच्छे पॉइंट्स बोले थे लेकिन क्या बोला था याद ही नहीं है, राइट। हम रोज नहाते हैं तो रिफ्रेश रहते हैं, रोज भोजन करते हैं शरीर में ताकत बनी रहती है, 2 दिन नहीं खाओ शरीर में ताकत कम हो जाती है, राइट। जो आपको यहां मिला आत्मा के लिए भोजन था, तो अभी जाकर के अभी तुरंत कोई परिस्थिति आए ना आपके सामने, घर जाने के बाद कोई कुछ समस्याएं परिस्थिति आए तो आप उमंग उत्साह से उसको सामना कर लेंगे, अभी अभी सुनकर के आ रहे हैं, आत्मा में शक्ति है तो अच्छी रीति आप खुशी खुशी से उसको सामना करेंगे, लेकिन धीरे 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 दिन ब दिन फिर आत्मा में शक्ति कम होता गया तो छोटी छोटी बातें भी बहुत बड़ी लगने लगती हैं, है ना। तो अभी जो आत्मा में वो शक्ति जमा हो गया है उसको ऐसे ही जमा रहने के लिए या फिर और बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, अभी क्या करना होगा, हर रोज थोड़े समय के लिए आपको मेडिटेशन करना होगा, थोड़े समय के लिए आपको कुछ सुनना होगा, हर रोज थोड़ा बहुत, जैसे हम मुरली सुनते हैं हर रोज सुबह, ऐसे आपके लोकल सेंटर्स भी हैं, वहां जरूर आप विजिट करें, दिन में एक बार अगर आप विजिट करते हैं बहुत अच्छा है, सुबह हो सके तो बहुत बढ़िया, लेकिन नहीं हो पाता है तो शाम को भी आप जाए 10-15 मिनट या आधे घंटे के लिए भी आप जाकर के कुछ सुन करके थोड़े समय के लिए मेडिटेशन करके आते हैं, बहुत अच्छा। अगर हर रोज नहीं जा पाते हैं, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, हफ्ते में 2 बार जा सकते हैं, गुरुवार के दिन हम हमारा स्पेशल होता है, सद्गुरुवार का दिन भोग लगता है और स्पेशल होता है, तो उस दिन, और संडे, संडे फ्री है सब, संडे आधे घंटे के लिए भी आप जा सकते हैं, राइट। गुरुवार को और संडे को, हर रोज जाएं तो बहुत अच्छा, लेकिन नहीं जा पाते हैं तो हफ्ते में 2 दिन आप जाकर के देखिए, तो आत्मा में जो शक्ति है कैसे बढ़ता है और जीवन को देखने का जो तरीका है, दृष्टिकोण आपका बदल जाता है, कितना पॉजिटिव एनर्जी आपकी जिंदगी में आ जाता है, तो आप खुद महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ओम शांति। थोड़े समय के लिए हम मेडिटेशन करते हैं, फिर कुछ जरूरी अनाउंसमेंट्स हैं। बीके गाइड टीचर्स एवं सेवाधारी भाई बहने जो कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं और बाबा मिलन में रुकने वाले नहीं है, वो सभी ही अभी ही कॉन्फ्रेंस हॉल में ईश्वरीय सौगात लेने के लिए जाएं, बाद में नहीं मिलेगी, जो भी सेवाधारी भाई बहने आए हैं वही कॉन्फ्रेंस हॉल में जाए तुरंत। जो VIP भाई बहने हैं, मेहमान भाई बहने हैं, दादी जी मीटिंग हॉल में ब्रेकफास्ट या लंच कर रहे थे, वो आज नहीं है। तो इसलिए VIP डाइनिंग हॉल जो टेलीफोन एक्सचेंज के पास है, ज्ञानामृत भवन के पास है VIP डाइनिंग हॉल, वहां आप सभी का प्रबंध किया हुआ है ब्रेकफास्ट का। ओम शांति।